ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको जो बहुत अच्छे सौन्नति के इशारे दिए हैं, विशेष जो बाबा हम सबसे उम्मीदें रखकर बहुत सुंदर शिक्षाओं से सजा रहे हैं, मैं समझता हूँ आप सभी उसे बार बार रिवाइज भी करते होंगे। और बाबा का इतना सुंदर होमवर्क जो हमें मिल रहा है 15-15 दिन के बाद, उस पर सभी का बहुत अच्छा ध्यान होगा, है सभी का, कि ऐसे ही योग करके चले जाते हैं। वैसे तो बाबा की शिक्षाएं हम सबकी रक्षा कर ही रही हैं, और बाबा का अपना अलौकिक जादू का खेल वो भी हम सभी देख रहे हैं। सब कुछ करके अपने आप को छिपाता है, अनुभव हो रहा है, इतना बड़ा बेहद का कार्य, इतनी सेवाएं कैसे गुप्त रीति से बाबा खुद करा रहा है। ऊपर बैठ करके बच्चों को सिर्फ इशारे में गाइड करता है और सब कार्य अपने आप चल रहे हैं। अगर अनुभव पूछे जाएं, यहाँ रहने वालों को शायद इस तीर्थ स्थान पर रहते रहते इसकी विशेषताओं का अनुभव कम होता हो, लेकिन जब कोई पहली बार या नया आता है उसके अनुभव अगर सुनते हैं तो ऐसे लगता है सचमुच भगवान तेरा ये जादू का खेल चल रहा है। अभी 1600-1700 गांव के भाई और बहने आए थे, आपने देखा होगा, दूध मंडली जो दूध डेयरियों को देती हैं, राजकोट और वलसाड़ से करीब 1700 का ग्रुप आया था। कल उनके अनुभव हम सुन रहे थे रात्रि क्लास में, 2 दिन के अंदर ऐसे विचित्र, इतने उमंग उत्साह के अनुभव 2 दिन में बाबा ने उन्हें कराए हैं, जो उनको पता भी नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं, शांतिवन क्या है, डेयरी की तरफ से निमंत्रण मिला चलना है आबू दर्शन के लिए, आबू घूमने के लिए शैक्षणिक शिविर है वहाँ, और इस भूमि पर आकर के वो बाबा के घर में जब पांव रखते हैं तो पांव रखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अलग दुनिया में हम आ गए, अलौकिक दुनिया में आ गए, स्वर्ग में आ गए। तो जब वो अनुभव सुना रहे थे कल का, 7 बजे के बाद जब दादी जानकी मिली है, उसके बाद कितने लोगों ने अपने व्यसन दान किए हैं, दवाई देने वालों के पास भी लाइन लगी हुई थी कि हम छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे। और एक पहले पहले जब हमने कहा माताओं से अनुभव हम सुनेंगे, तो माताओं को अनुभव सुनाने की इतनी उमंग थी कि एक के बाद एक खड़े होने लगे, और जो उनके पास छिपी हुई कमियां कमजोरियां थीं, कोई खानी खाते हैं, पता नहीं तंबाकू खाती होंगी माताएं भी, वो अपनी पुड़िया ले लेकर के ऐसे फेंक रही थी और इतना उमंग से सुना रही थी गुजराती भाषा में, जो एक एक से लगता था कि 2 दिन में कितना परिवर्तन करके इतना सीख करके जा रहे हैं। कुछ आदिवासी एरिया की भी माताएं थीं, 11 बज गया हमने अभी बंद करो अब नहीं सुनेंगे अनुभव। बहुत विचित्र भगवान के घर की कमाल है, क्या खिलाते हैं, क्या उनको हम देते हैं, हम भी सोचते हैं क्या इनको हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बाबा का इस घर का वायुमंडल वाइब्रेशन, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का स्नेह, यहाँ की रूहानियत उन आत्माओं को ऐसा खींच लेती है जो कहीं भी उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। यहाँ आते ही वो अनुभव करने लगते हैं कि ऐसा स्थान तो हमने कभी देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है जी। बहुत सारे मुस्लिम भाई बहने थे, वो भी पिछले बार भी एक मुस्लिम माता ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था, और इस बार भी माताएं बस यही कहती थी, बहिष्ठ है तो यही है, अल्लाह का कार्य तो यही चल रहा है। बहुत सारी मुस्लिम माताएं थी और भाई भी थे, उनको पहले संकोच होता था, वो पूछ रहे थे कि हम जाएंगे पता नहीं हिंदू धर्म का ज्ञान मिलेगा, क्या है उनकी व्यवस्थाएं। लेकिन बाबा का ज्ञान सुन करके, बाबा के नवीन ढंग से दिए हुए ज्ञान को जब वो लोग सुनते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आत्मा और परमात्मा की सही पहचान जब उनको प्राप्त होती है। भोजन तो अच्छा लगता ही है, भोजन की महिमा तो करते ही हैं, खिलाने वालों की, संभालने वालों की, वो तो विशेषताएं वर्णन करते हैं, लेकिन जो ज्ञान पर उनका ध्यान जाता है कि ऐसा ज्ञान कि हमको पता ही नहीं मैं आत्मा हूं, इतना समय हम ऐसे ही रह गए, इतने शास्त्र भी पढ़ लिए, कई पढ़ी लिखी, संस्कृत बोलती थी माताएं भी, पढ़ी लिखी भी थी। तो मैं सोच रहा था कि सचमुच बाबा ने हम सबको कैसा वंडरफुल ज्ञान दिया है, कैसी पढ़ाई पढ़ाई है जो हरेक के लिए लागू होती है, चाहे वो गांव से गांव का हो, चाहे बड़े से बड़ा वीआईपी अपने को कहलाता हो। भावना का भी खैर खेल है, तो भावना की धरनी है गुजरात, और गुजरात से जब कोई ऐसी भावना की धरनी से आत्माएं आती हैं, तो भावना का भी फल तो बाबा देता ही है। नहीं तो नई नई माताएं बाबा की भंडारी में दूध डेयरी वाले आए और भंडारी में पैसा डालना शुरू करें, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होता है। पुराने ही नहीं डालते हैं, नयों की क्या कहें, ये तो आते ही भंडारी में लाइन लगा देती, डालना शुरू कर देती, चाहे 10 रुपया ही डालें, और बाद में VCD, मेरे को VCD चाहिए, कैसेट नहीं चाहिए, VCD चाहिए। मैं VCD क्या करेंगी, एक घंटे में एक लेक्चर सुनेंगी क्या, एक ही फोटो आपको दिखाई दे, नहीं वही चाहिए भाई साहब, कमाल है बाबा की घर की। तो बाबा का अपना कार्य गुप्त रीति से चल रहा है, और बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा भी क्या बने, साक्षात्कार मूर्त बन जाए। जब वो लोग कहते हैं कि हम इस स्टेज से आज क्रोध छोड़ करके जाते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं कि बाबा के ये नए नए बच्चे नए नए संकल्प लेते हैं, क्रोध नहीं करेंगे। हम मंडली में बहुत गुस्सा करते हैं, हम आज यहाँ छोड़ के जाते हैं और बाबा अभी तक हमको क्रोध का पाठ पढ़ाता है। अभी भी इसी मुरली में क्या कहा लास्ट में, कि बच्चे व्रत लो, पांचों में से एक नहीं छोड़ो, लेकिन सब छूटने चाहिए, और इनके आने का कारण जो है वो भी बता दिया, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, और समाप्त करने की विधि सुना दी, दृढ़ता, एकाग्रता और एकानामी। तो बाबा हम सबको सार्ट में संक्षेप रूप में वही बातें जो इतने समय से पढ़ाता आ रहा है उनका सार करता जाता है। अभी हम सभी कितना दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, संकल्प में दृढ़ता कहाँ तक आई है, या बाबा कहता है और हम सुन लेते हैं। एक बहन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया इस बार शिवरात्रि पर, झंडा रोहण हो रहा था, वो मेरे पास में ऐसे खड़ी होगी, बोली भाई साहब एक बात पूछूं। मैंने क्या पूछेगी, पता नहीं यहाँ पर क्यों पूछ रही है इतनी बड़ी भीड़ के बीच में। बोली ये सब जो चल रहा है ना, ये कितने लोग समझ रहे हैं, ये बाबा इतना जो सुनाता है कितने लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बाबा मेरे लिए कहता है। बड़ा विचित्र प्रश्न इसने किया है ना, विचित्र प्रश्न। इतनी सभा को सुना रहा है 10,000, 15,000, उसमें कितने लोग ग्रहण करते हैं, कितने लोग लगाते हैं कि ये मेरे लिए बाबा कह रहा है, अब मुझे करना है कुछ भी हो जाए। तो जो उसने प्रश्न पूछा तो मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। हमने कहा जो विजयी माला के मणके हैं, शायद बाबा अभी उनको तैयार कर रहा, उनकी पॉलिश कर रहा है, बाकी सभी कोई समझे या न समझे, प्रजा क्वालिटी तो अपने आप बन जाएगी, लेकिन विजयी माला में आने वाले विजयी रत्नों की बुद्धि में तो जरूर ठक से लगता ही होगा, वो तो समझते ही हैं बाबा की बातों को, और बाबा तो राजाई की स्थापना कर रहा, प्रजा योग सिखाता ही नहीं है। जो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं बैठी हैं, भले उनके ऊपर से ही निकल जाता हो, मानते हो या समझते हो या न समझते हो, लेकिन जो बाबा के विजयी रतन हैं, जो विजय माला के मणके हैं, जिनका राजाई घराना है, सतयुग और त्रेता की जो ऐसी रायल कुल की आत्माएं हैं, जिनको बाबा को संपन्न बना करके साथ ले जाना है। बराती तो बहुत होंगे और साथ साथ चलने वालों की संख्या भी बहुत होगी, लेकिन जो साथ एकदम साथ साथ जाएंगे, साजन सजनी के रूप में जाएंगे, वो आत्माएं तो जरूर इसको ग्रहण करती ही हैं, बुद्धि में उनकी बैठता ही है, और वो समझ करके उसको यथार्थ रीति से जैसा बाबा चाहता है बस मैं वैसा करूं। तीन बातों पर आज मैं आपका ध्यान खिंचवाता हूं, ध्यान देना, तीन बातें हमारे मार्ग में बहुत रुकावट डालती हैं। हर एक पुरुषार्थ की रेस कर रहे हैं, उसमें तीन बातें जो मुझे ध्यान पर आई हैं, एक है किसी न किसी बात की पराधीनता। कहा जाता है पराधीन सपनों सुख नाही, सपन में भी सुख नहीं मिल सकता है अगर कोई आत्मा किसी के पराधीन है, अधीन है, इसके बिना मैं नहीं चल सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, चाहे वो साधन सुविधाएं हों, चाहे संबंध हों, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की अधीनता हो, साथी की भी अधीनता होती है, और अधीन आत्माएं जो हाथ में पानी चाहती, कोई गिलास हाथ में दे दे, जो भोजन बना के दे दे, जो ये करके दे दे, तो मैं खाऊं, तो मैं रहूं, मैं समझता हूं आप सभी विचार करना, क्या उस आत्मा को सुख का अनुभव, सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव हो सकता है? हम सभी एक दूसरे के इतने अधीन हो गए हैं, कई बार कभी कोई साधनों के अधीन है, कोई संबंधों के अधीन है, कोई अपने संस्कारों के भी अधीन है, स्वभावों के भी अधीन है, संकल्पों के भी अधीन है, और जहां अधीनता है परवश स्थिति बना देती है वो, और ऐसी परवश आत्माएं एकदम हल्की हो करके बाबा को याद करें, सुख का अनुभव करें, मिलन का अनुभव करें, बहुत मेहनत है, नहीं लगेगा योग, उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। और दूसरी बात इसी से संबंधित है, बंधन, पराधीनता अलग चीज है, अधीन तो हम बिना बंधन के भी एक दूसरे के हो जाते हैं, बंधन नहीं है लेकिन अधीनता है, लेकिन बंधन जो है जिनके लिए बाबा कहता है बंधन को काटो, पराधीनता को छोड़ो, लेकिन काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, आत्माएं एक दूसरे के बंधन में आ गई हैं और बंधन में बांध रही हैं, कुछ न कुछ दे करके, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, संबंध के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, पिछले और अगले कर्मों के हिसाब से बंधन बने हुए हैं, और बंधन जो बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं क्या करेंगी। पशु को आज बंधन से बांध दिया जाता है, बेचारा परवश हो जाता है, बंधा हुआ है, कुछ नहीं अपने मन से कर सकता है। तो यहां पर भी कई आत्माएं बंधन में हैं, और बाबा कहता है बच्चे ईश्वरीय स्नेह के संबंध में आ जाओ, ईश्वरीय सेवाओं में लग जाओ, ये बंधन कट जाएंगे, कट जाएंगे। बंधन बंधन कहते रहोगे तो बंधन ये कभी भी टूटेंगे नहीं, बंधे रहोगे, बांधा किसी ने नहीं है लेकिन हम खुद ही। कई बार मन के बंधन ऐसे कड़े होते हैं, आज एक भाई जा रहा था, आया था यहाँ पर दो दिन के लिए, हमने कहा भाई क्यों इतना, क्या बंधन है तुमको? बोला भाई साहब आज ही जाना पड़ेगा। हमने बाबा दो दिन में आ रहा है, रुक जाओ। नहीं रुक सकता, क्या बंधन आ गया इसको? फिर बाद में पता चला कुछ लौकिक का इतना कड़ा बंधन है, इसको जाना ही पड़ेगा। हमने जाओ जाओ, छुट्टी दिया। बंधन भी ऐसी चीज है जो भगवान से भी मिलने नहीं देता। अब आप सोच सकते हो, अगर कोई भी बंधन है, चाहे हमने बनाया है या बन गया है, कोई हिसाब से ही बना है, कोई कर्मों से बना है, कोई कोई को सेवा का भी बंधन ऐसा है जो सुख का अनुभव, योग का अनुभव नहीं कर देते। कहते क्या करूं, इतनी मेरे पास सेवाएं हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं है, योग करने की भी फुर्सत नहीं है, अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करने की, सेवा ने बंधन डाल दिया। क्या हिसाब किताब है, आए हैं बाबा के घर में सेवाएं करने, चलो सेवा किया, लेकिन कम से कम अपनी उन्नति का जो साधन बाबा ने बनाया है, जो हमें इतने साधन दिए हैं उन्नति के, उसमें तो हम अलर्ट रहें, उसमें तो बहानेबाजी और अलबेलापन न हो। ठीक है, सेवाएं हैं, सेवाओं के समय हम करते हैं, करें, लेकिन वो इतना बंधन न डाल दें जो हमारी स्वस्थिति को ऊंचा उठाने में रुकावट डालती हूं। क्यों सेवा का ऐसा बंधन बना लिया है? समय पर अगर वो कार्य किया जाए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक बार एक बुक बना रहे थे विदेशी लोग, मैं आपको दृष्टांत देके बताता हूं। जब ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ग्लोबल हाउस से, ग्लोबल रिट्रीट से एक बुक बन रही थी विजन की, और वो ग्लोबल बुक जब तैयार हो रही थी तो विदेशी भाई बहने कहते थे, बाबा इतनी ओपिनियंस हैं, इतना सब कार्य है, मैं इतना बिजी रहता हूँ जो रात को 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, फिर उठ जाता हूँ अगर सवेरे सवेरे तो नींद आती है, सुस्ती आती है, आलस्य आता है। तो बाबा के पास जब वो बातें गई और बाबा के सामने बैठे, तो बाबा बहुत प्यार से उनको सिखाया उसको। देख रहा था मैं कैसे सिखा रहा है बाबा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम रात को टाइम पर सो जाओ, 10 बजे 10:30 बजे सो जाओ। बोला काम रह जाता है, क्या करूं? बोला जो काम तुम 3 घंटे में रात को करोगे, 10 से 1 बजे करो, वो काम तुम अगर 1 घंटे अमृत वेले योग के बाद करोगे तो 5 से 6 के बीच में कर लोगे, और बहुत ठीक करोगे, युक्ति से करोगे, अच्छा होगा। थकी हुई बुद्धि ठीक काम नहीं करती है, और योग भी मिस हो रहा है, आपकी दिनचर्या भी बिगड़ रही है, आपका शरीर भी बिगड़ रहा है। बाबा ने कभी कहा ही नहीं है कि ऐसे बंधन बांध लो, सेवा करो, सेवा के लिए कोई मना नहीं है। सेवाएं जितनी मिली हैं अच्छी हैं, करो, दिल से करो, प्यार से करो, उमंग से करो, यही सेवा के लिए जीवन। आए किस लिए हैं? सेवा छोड़ करके तो हम योग में बैठ भी नहीं सकते, योग लगेगा भी नहीं, करनी है। लेकिन जो हमारी उन्नति के लिए बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है, कम से कम सो उन्नति के लिए थोड़ा समय, उसमें अलवेलापन और बहानेबाजी ना हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म मिक्स होती है, उस पर बहुत ध्यान चाहिए कि क्यों हमने अगर योग नहीं किया, अगर हमारा अमृत वेला मिस हुआ या आलस्य भरा हुआ, तो इसमें हमारी कोई गफलत तो नहीं है। अगर हम कोई कारण ही है, कोई अलग बात है, शारीरिक बीमारी है, अस्वस्थता है, नहीं हो सकता है, वो अलग, उसकी कंडीशंस अलग हैं, उनके लिए बाबा ने छूट भी दी है। लेकिन बहानेबाजी जहां आ जाती है, सेवा का बहाना है, सेवा है, लेकिन उसको सेटिंग करना नहीं आया, उसको ठीक ढंग से अगर एडजस्ट करके चलाना नहीं आया, सेवाएं किसके पास नहीं है? बाबा कहता अगर कोई सेवा करना चाहे तो उसके पास बहुत सारी सेवाएं हैं, करना चाहे सिर्फ उसकी इच्छा हो, कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास सेवा ही नहीं है। अगर मान लो शरीर भी कार्य नहीं कर सकता है, तन से कोई कर्मणा सेवाएं आप नहीं कर सकते हो, तो भी मनसा की शुभ भावनाएं तो दे सकते हो। कम से कम एक नेगेटिव चिंतन, व्यर्थ चिंतन, उसको फुल स्टॉप लगा दो। बहुत बड़ी सेवा है यज्ञ की। अगर कोई आत्मा सच्चे मन से शुभ भावना रख करके इस यज्ञ में रहती है, अच्छी भावनाओं का वाइब्रेशन बना देती है, तो उसको बहुत गुप्त रूप में बाबा का दुआओं का स्टॉक मिल जाता है, बहुत गुप्त पुण्य मिलता है, अगर अच्छे वाइब्रेशन से उसने वायुमंडल को बनाया है, अच्छी वृत्तियां रखी हैं, पवित्र विचारधाराएं हैं, सोचता नहीं अधिक नेगेटिव व्यर्थ। कम से कम इतना तो ध्यान हम दें, क्योंकि व्यर्थ बातें न हो संगठन है, कुछ न कुछ तो होता है। आत्माएं वैरायटी हैं, भिन्न भिन्न हैं, स्वभाव हैं, संस्कार हैं, बातें हैं, बहुत कुछ दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। लेकिन जो बाबा की प्रेरणाएं हैं उनको कैच करते हैं, जो बाबा के राइट हैंड हैं, जो सहयोगी हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देते। कुछ भी हो रहा हो, मुझे अपनी स्व स्थिति बनानी है, इसलिए मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, सब अच्छा हो रहा है। परसों स्लोगन में क्या बाबा ने कहा, सच अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। क्यों व्यर्थ सोचते हो, क्यों नेगेटिव सोचते हो? इसलिए चलता है, ऐसा नहीं नहीं है। हाँ, अगर कोई आपकी जवाबदारी है, कोई आपको मिली हुई ऊपर से जवाबदारी है जिसके आप निमित्त अपने को समझते हो, उसके प्रति अगर कुछ समय दे रहे हो तो अलग बात है। लेकिन आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, आपको कोई ने ड्यूटी नहीं दी है कि आप करो, और फिर भी आप अपना व्यर्थ चला करके, संकल्प रच करके अपने आप को उलझा रहे हो, दूसरों को उलझा रहे हो, खुद के वायुमंडल, खुद की वृत्तियों को खराब कर रहे हो और दूसरों की वृत्तियों को भी सुना करके, बोल करके, ऐसा हुआ, ऐसा करता, वैसा करता है, हम कुछ नहीं कर सकते और सोचते बहुत है, तो क्या है, बंधन या बोझ? तीसरा है बोझ, क्योंकि ऐसा करते करते आत्मा के ऊपर बोझ सूक्ष्म पापों का चढ़ता है। आज बाबा ने एक शब्द बोल दिया, ये महापाप है। आपका ध्यान गया होगा इस बात पर कि अगर कोई अपनी विशेषताओं को भी अपना समझ रहा, अपने गुणों को भी, अपनी सेवाओं को भी समझता, मैंने किया है, तो भी बाबा कहता है सूक्ष्म में भी, स्वप्न में भी आता तो महापाप बन जाता। प्रभु को देन को, प्रभु की देन को अपना समझ लिया, बोझ चढ़ा दिया उसने। बाबा ने अगर कोई विशेषताएं दी हैं, हम कर रहे हैं प्यार से सेवाएं दे रहे हैं, सफलता मिल रही है, मेरा योग अच्छा है, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी समझ अच्छी है, मैं अच्छा कर रहा हूं, बाबा कहते हैं तुम पाप कर रहे हो। कितना एक गहरा शब्द है, विचार करने वाला शब्द है, अंडरलाइन किया होगा आप सबने, किया है? सुन तो लेते हैं, लेकिन ध्यान जाना चाहिए इस बात पर कि बाबा कितना गहरा राह सुना रहा है कि बच्चे कभी भी आ गया कि मैं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता है, मैंने बहुत अच्छा किया, तो ये भी एक बुद्धि का अभिमान है। और बुद्धि का अभिमान रखने वाली आत्माएं अभी अभी अभिमान होगा, नशा चढ़ेगा, खुशी होगी, और थोड़ी सी कोई कटाक्ष कर दे, कोई अपमान कर दे, तो क्या होगी स्थिति, सोडा वाटर हो जाएगा। अभी अभी बहुत नशा और अभी अभी एकदम खुशी गायब, पूछो क्या हुआ, ठीक है ठीक है मैं ठीक हूं, तुरंत पता चलता है कि इसको अपमान कुछ लग गई अंदर बात, और उसका कारण है कि सूक्ष्म में इतना अभिमान है अपने आप का, बुद्धि का, या अपने करने का, जिस कारण वो फीलिंग्स जल्दी आती है। इसलिए दुख के अगर कारण देखे जाएं, सुख स्वरूप स्थिति तो तब बनेगी जब हम खुद अपने कारणों का निवारण करें। बाबा ने इस बार काम ये दिया है कि कारण शब्द नहीं सुनाओ, समस्याएं शब्द नहीं सुनाओ, उनका निवारण करो। तो जो कारण है, जो हमारी स्थिति को सुख स्वरूप बनने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो अपमान की फीलिंग्स हैं, चाहे वो पराधीनता है, चाहे बोझ है, चाहे बंधन है, किसी भी प्रकार के, चाहे अप्राप्तियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, कोई इच्छाएं ऐसी रही हुई है, ये चीज चाहिए पूरी नहीं हुई, अप्राप्ति, बाबा हम सबको इतनी प्राप्तियां करा रहा है स्थूल और सूक्ष्म से, मैं समझता हूं कोई बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं रखी संगम पर। है कोई ऐसा जो कहे मेरे पास ये चीज की कमी है? कलयुग के अंदर होते हुए भी अपने बच्चों को बाबा ने सतयुग के रूप में रखा है, सतयुगी बच्चे है मेरे। बाबा हम बच्चों की इतनी पालना कर रहा है, इतना सब कुछ दे रहा है, जिसके पास मूल्यों का, गुणों का धन है, चरित्र का धन है, शक्तियों का धन है, ज्ञान का धन है, वो अगर बेगमपुर का बादशाह नहीं तो कौन बनेगा? उसको किसी बार का, किसी भी प्रकार का गम है, किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार की अशांति है, कारण क्या? उसने अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को देखा नहीं, बाबा ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, इतनी ऊंची समझ दी है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, हर आत्मा के पार्ट का ज्ञान दिया है, साक्षी दृष्टा बनाने का ज्ञान दिया है। बच्चे देखो हर आत्मा के पार्ट को, कैसा कैसा पार्ट है, कितना वंडरफुल पार्ट है, कैसे खेल खेल रहे हैं। अब उस पार्ट को देख करके अगर मैं आत्मा क्यों क्या कैसे में भी चली जाऊं कि ऐसा क्यों करता है, ऐसा कैसे होता है, माना मैंने बाबा के इस पाठ को पढ़ा नहीं, और बाबा के पाठ जो बाबा पढ़ा रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ऊपर ऊपर से निकल जाता है, तो ये भी बाबा की सूक्ष्म ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि बाबा ने कहा और हमने नहीं किया। बाबा ने हम बच्चों से उम्मीदें रखी, हमने हाथ उठा दिए, अब बाबा कहता था एक हाथ उठाओ, इस बार बोला दो दो उठाओ, दोनों उठा दो है? अब बाबा हाथ उठवा उठवा करके देख रहा है कि ये बच्चे कहते तो हैं, वायदे तो कर लेते हैं, संकल्प तो करते हैं, लेकिन लेकिन हो जाता है, भूल जाते हैं फिर थोड़े दिन के बाद। अंत समय में तो दिखाएगा, टीवी आएगी सामने, स्क्रीन पर आएगा कि बच्चों ने कैसे वायदे किए हैं, क्या क्या वायदे किए हैं और करते क्या हैं। इसलिए बहुत ध्यान से बाबा जो कह रहा है उस पर मनन करना, चिंतन करना। और अगर कोई बोझ है, योग नहीं लग रहा तो क्या है, बोझ ही है। एक सेकंड में मैं बैठता हूँ, कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ, बाबा के पास आके बैठा, बाबा की ट्रांसलेट के आगे आके बैठ गया, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आधा घंटे हो गया गुड मॉर्निंग भी नहीं की बाबा से, क्या होता है। कभी कभी सोचना ऐसा क्यों हुआ, 10 मिनट निकल गया, 20 मिनट निकल गया, बैठे सामने हैं और फिर बुद्धि को इधर उधर ले जा रहे हैं, अटेंशन रूपी पहरेदार अलर्ट नहीं है, ये बाबा कहता अलबेलापन है। नियम पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, आते हैं क्लास में, आते हैं योग में भी, आते बाबा के कमरे में भी बैठते हैं, लेकिन वो एकाग्रता कहाँ है, वो स्थिरता कहाँ है, वो स्वच्छता कहाँ है, वो दिव्यता कहाँ है, वो यथार्थता कहाँ है। अब इसको चेक करना हमें, अगर वो यथार्थ है, अगर उसके अंदर एकाग्रता है, तो एकाग्रता से यथार्थता आई, और यथार्थ है तो उसकी सिद्धियां अवश्य दिखाई देनी चाहिए। कई कहते हैं कितने समय से योग कर रहे हैं, संस्कार बदलता नहीं है, ये प्राप्ति है, ये बंधन है, ये बोझ है, कारण क्या है। योग की जो यथार्थ विधि है, उस विधि में कुछ न कुछ हमने अपनी मन मत या अलवेलापन या आलस या बहानेबाजी ऐड की हुई है, अपनी मन मत से, बाबा की श्रीमत से नहीं ऐड किया, लेकिन हमारे यहाँ चलेगा, चलता है, योग तो कर रहे हैं। बाबा ने इस बारी कह दिया कौन चलाता है, चलता है चलता है, कहे तो किसने कहा है चलना चाहिए। अगर हम सभी अपने उस बात को चेक करें कि हम बाबा के सामने आए बैठे, सचमुच एक सेकेंड लगा उड़ने में, हमने वो संकल्प लिया है मैं बाबा के पास जाऊं, आया हूं यहां बैठा हूं, समय दिया है, सब कुछ छोड़ करके बैठा हूं, अब वो एकाग्रता अगर बन गई, एक सेकंड लगे और बाबा के पास आत्मा उड़ करके पहुंचे, अपने आप वो शक्तियां इमर्ज होंगी, दिखाई देंगी, और वो अगर हमारे अंदर पावर आ रही है तो उसकी निशानी कर्मेंद्रियां अपने आप शांत होने लगेंगी, शीतल होने लगेंगी, स्वभाव संस्कार अपने आप चेंज होने लगेंगे, अपने आप दिखाई देगा कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है, विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा। यथार्थ योग है, परिवर्तन अवश्य होगा, संकल्प उठेगा और सिद्धि अवश्य मिलेगी, भगवान के बच्चों को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। अगर भगवान के बच्चे भी कहें कि ये संकल्प तो मैं इतने समय से कर रहा हूं, ये सिद्धि नहीं मिली, ये बंधन नहीं कटा, ये हिसाब किताब चुक तो नहीं हुआ, क्या करूं, ये अभी तक अप्राप्ति है, माना ये अभी तक अप्राप्ति है, ये अभी तक बंधन रहा हुआ है, ये मुझे खींच रहा है, ये मेरा संस्कार अभी तक चलता आ रहा है बहुत समय से, कारण क्या है? संकल्प की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। संकल्प तो हम रखते हैं लेकिन वो दृढ़ता नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है, हमने उस एकानामी को सीखा नहीं है। कई लोग पैसे की एकानामी करना जानते हैं, बहुत कंजूसी से भी चलते हैं, चलो ठीक है बचाते हैं। इस बारी बाबा ने बड़ा अंडरलाइन शब्द दिया है इसमें, बाबा ने कहा बच्चे संकल्प और समय की एकानामी करना नहीं आता, इसलिए यज्ञ की एकानामी पर ध्यान नहीं। ध्यान गया होगा इस बात पर भी, कैसे बाबा एक एक बात को हमारी अंडरलाइन कराता है कि अगर कोई एकानामी करना नहीं जानता है व्यर्थ गवाता है। एकानामी माना ऐसा नहीं है कंजूस बन करके रहो, बाबा ने दिया है उसको अच्छी तरह से सफल करो, कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ, बड़ी दिल वाले बनो, लेकिन जहां व्यर्थ जा रहा उसको स्टॉप कर दो, व्यर्थ पर स्टॉप करो, तब कहेंगे एकानामी का अवतार है। संकल्प समय श्वास जो आज बाबा ने कहा आज की मुरली में जो था, खजाने हैं, इनको सफल करो, इनको बढ़ाओ, इनको बचाओ, इनको जमा करो। अगर वो जमा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दे रहे हैं दूसरों को, हम हमारे पास है और हम दे नहीं रहे हैं, तो वो एकानामी नहीं। देना एकानामी है, सफल करना, कार्य में लगाना, सेवा में लगा देना। तो अगर हम सभी का ये ध्यान है कि बाबा ने हम सबको जो कुछ दिया है, जितनी प्राप्तियां कराई हैं, हम इन प्राप्तियों से खुद को इतना संपन्न कर लें जो हमारा एक एक अंग दूसरों को कुछ न कुछ दे। अब ऐसा दानी, बाबा ने कहा कुछ दो, आपके साथ कोई संपर्क संबंध में आता है, स्नेह दो, सहयोग दो, खुशी के कुछ बोल दो, दो उनसे प्राप्ति हो, ऐसे नहीं देना नहीं है तो देना है, ऐसी एकानामी हमको इसमें नहीं कर लेनी है। लेकिन जहां जहां लीकेज है, जहां जहां व्यर्थ है, जहां हमारी आवश्यकताएं नहीं है, जो हमारे काम की चीजें नहीं है, उनको ब्रेक फुल स्टॉप लगाओ, व्यर्थ न जाए। क्यों जाए? हमारी शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ चली जाएं? संकल्प सिद्ध होने चाहिए और वो संकल्प हमारे ऐसे ही बह रहे हैं, जो आया सोच लिया, जितना आया सोचते गए, खुद को परेशान किया और दूसरे को भी परेशान कर दिया, वायुमंडल को भी भारी कर दिया, बाबा की दुआओं की बजाय बोझ चढ़ गया। इसलिए ध्यान रखना, तीन बातें जो बताई है कि कोई भी कारण से मुझ आत्मा पर अभी बोझ नहीं चढ़े। बोझ वाला कभी खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, बोझ वाला कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकता। आज दादी जानकी हम लोगों से मिल रही थी, बोली पवन पूत का चित्र बहुत अच्छा मुझे लगता है, हनुमान का। कहती मैंने दो चित्र कोई मेरे को दे के गया, मैंने लंदन म्यूजियम में भेज दिया कि वहां रखो जाकर के, बहुत अच्छे लगे मेरे को। फरिश्तों के चित्र तो अच्छे हैं लेकिन पवन पूत का चित्र कितना अच्छा है, पहाड़ हाथ में है, उड़ रहा है, कोई बंधन नहीं है, हवा की तरह हल्का है, लाइट है। हम सभी भी बाबा के पवन पुत बच्चे, बोझ लेकर के न बैठे, जहां चाहिए जब चाहिए संकल्प से हम सेवा करें, हाजिर हो जाएं भगवान की सेवा पर, जी हाजिर राम के सामने, जी हाजिर कुछ भी हो, कहां भी कोई भी सेवा हो, जुतियों पर बैठ करके सेवा करनी पड़ी, किया ना राम, क्या हनुमान की कहानी में दिखाया है, वो रूप तो अलग दिखा दिया भक्तों ने लेकिन यथार्थता क्या है, सत्यता क्या है, वो तो हम सभी जानते हैं। संगम युग पर जो ऐसे आज्ञाकारी रहे हैं, जो ऐसे डबल लाइट रहे हैं, जो ऐसे हल्के रहे हैं, सदा हाजी किया है, वही तो पवन पूत हैं, उनकी तो पूजा हो रही है। तो हम सभी बाबा के बच्चे डबल लाइट स्थिति में रहें और जो बंधन है उनको काटें। बोझ को उतारना होता है, बंधन को काटना पड़ता है और अधीनता को छोड़ना पड़ता है। इसलिए ना अधीनता रहे, ना कोई बंधन रहे, ना कोई बोझ रहे, तब हम बाबा की इशारों को समझ सकेंगे और बाबा जो चाहता है वैसा बन करके दिखाएंगे। ओम शांति।